उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। आज 24 जून है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में इस दिवस को मम्मा डे के रूप में मनाया जाता है। मम्मा अर्थात जगदम्बा सरस्वती, जो इस विश्वविद्यालय की प्रथम मुख्य प्रशासिका थी, उनका संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा अर्थ अर्पित था। उन्होंने गहन तपस्या करके आज ही के दिन अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया। यही कारण है कि 24 जून को मम्मा डे के रूप में उनके स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है।
माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी। हो खुदा पे भी असर, तू दुआओं का है घर, मेरी माँ।
मैं उनके जीवन चरित्र को पढ़ रहा था तो बहुत सारी महानताएं उनके जीवन में थीं, जो वास्तव में सबको प्रेरित करने वाली हैं। इसीलिए मैंने विशेष भ्राता जी से अनुरोध किया कि आज के दिवस पर अवश्य मम्मा के जीवन चरित्र को हम सबके सम्मुख रखें, ताकि उनके जीवन से हम भी बहुत कुछ सीखें, आगे बढ़ें और समाज के लिए अपना भी कुछ योगदान दे सकें। तो आइए, भ्राता जी के अभिनंदन के साथ साथ हम मम्मा अर्थात मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के जीवन चरित्र को जाने, समझें और उनसे प्रेरणा प्राप्त करें। भ्राता जी, बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है।
शुक्रिया।
विशेष दिवस है भ्राता जी, आज पूरे ही ब्रह्मा कुमारी इस परिवार के लिए मम्मा डे विशेष रूप से मनाया जाता है। हम जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि मम्मा डे विशेष करके मातेश्वरी जी की स्मृति में मनाया जाता है, लेकिन बचपन उनका कैसा था, कहाँ उन्होंने जन्म लिया, कहाँ उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, उनके परिवार में और कौन कौन थे, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं।
देखिए, हमारे यहाँ कोई भी जो दिवस मनाया जाता है
जी,
वो इस तरह से नहीं जैसे संसार में होता है, पर इस तरह से कि हम उनको याद कर उनके जीवन की महानताओं से कुछ श्रेष्ठ प्रेरणाएं प्राप्त करें। हमारे यहाँ किसी की भी न तो पूजा पाठ होती है, लेकिन जो जिसमें महानताएं हैं उनको जीवन में अपनाकर हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो मातेश्वरी जी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रथम मुख्य प्रशासिका थी। वो छोटी आयु में यहाँ पर आ गई थी, अमृतसर में उनका जन्म हुआ था, प्रारंभिक शिक्षा भी उनकी वहीं हुई, फिर मुंबई में हुई, फिर वो हैदराबाद में चली गई और अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उनके पिताजी और अंकिल की मृत्यु हो गई, तो घर में एक वैराग का माहौल हो गया और उसी टाइम बाबा ने वहां सत्संग प्रारंभ किया था। तो अनेक लोग शांति अनुभूति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए बाबा के पास आया करते थे। तो मामा के परिवार को भी किसी ने संदेश दिया, कई थे उसमें, मामा की माँ थी, मौसी थी, दूसरी मौसी थी, बहने थी, तो उनको भी कहा कि इनका जीवन बड़ा शांत हो गया है। तो किसी ने कहा चलो तुम भी दादा के सत्संग में चलो। बस ये सब आए और मामा ने जैसे ही बाबा को देखा, नाम उनका राधा था, और बस ऐसा लगा मेरे सच्चे पिता तो यही हैं। मैं आ गई जहाँ मुझे आना था, और वो जो शोक था मृत्यु का, वो जैसे क्षण भर में लोप हो गया और फिर से वो प्रभु मैं होने के लिए तत्पर हो गई।
हर पल ही तुझको देखूं, बाबा खड़े हैं पास में,
ये छोटी सी कहानी है उनकी, बस आई और रम गई, यहीं से शुरुआत होती है उनके सुंदर जीवन की। बाबा ने देखा ये कन्या बहुत गुणवान है, तब उनकी आयु लगभग 16 वर्ष रही थी
जी। ये किस सन की बात
ये हाई स्कूल उन्होंने किया था और ये बात 36-37 के बीच की रही है
जी।
हाई स्कूल उन्होंने किया था और वो क्योंकि परिवार में दुख का माहौल हो गया था तो वो बाबा के पास आ गई। बाबा ने देखा ये कन्या बहुत सुशील, और बाबा को भी आभास हो गया कि ये महान आत्मा मेरे पास आई है। जैसा हमारे सभी दर्शक जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा के तन में तो निराकार शिव की पधरामनी होती थी
जी।
तो ब्रह्मा बाबा की तो अपनी आंखें थी, अपना विवेक था, लेकिन जो सर्वशक्तिवान है, जो त्रिकालदर्शी है, जो सर्वज्ञ है, उसने उन्हें देख लिया कि ये वही है जो कभी राधा थी। राधा तो नाम इसका अब है, लेकिन ये वही है जिनकी मंदिरों में पूजा होती है, यही आगे चलकर महान तपस्विनी बनेगी और मेरे कार्य को संभालेगी। बस बाबा की ओर वो खींची चली आई। यहाँ बात ब्रह्मा बाबा की नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की ओर वो खींची चली आई। मामा देखने में बहुत सुंदर थी, गाती भी बहुत सुंदर थी, वीणा बजाती थी, डांस भी बहुत अच्छा करती थी, वास्तव में पढ़ते समय वो बहुत फैशनेबल भी थी, लेकिन यहाँ आते ही सब छूट गया। गीत तो मामा अब भी वीणा पर गाती थी बहुत सुंदर, और उनके मुख से जो गीत निकलते थे, देखिए गीत तो गायक बहुत हैं, लेकिन कुछ गायक ऐसे होते हैं जो पूरी सभा को मग्न कर देते हैं, और यहाँ क्योंकि साधनाओं का मार्ग था तब भी अब भी है, तो जैसे ही सब लोग आत्मिक स्वरूप में बैठते थे और मामा गीत गाती थी तो सभी जैसे कि समाधिस्थ हो जाते थे।
साधना में संगीत का एक अहम
बहुत बड़ा रोल है, सब जैसे समाधिस्थ हो जाते थे, सबके चित्त शांत और एकाग्र हो जाते थे। तो वास्तव में जैसे ही उन्होंने यहाँ पहला कदम रखा, वरदाता परमात्मा ने उनको अनेक वरदानों से संपन्न कर दिया था, उनकी वाणी में भी तुरंत प्रभाव आ गया और किसी को पता ही नहीं चला कि कब वो महान बन गई।
शिव ज्ञान उच्चारण किया और मोह मिटाया था, सब जागृत आत्माओं को शिव शक्ति बताया था। संगीत पुजारी थी बड़ा सरस्वती
जी। वही बात मैं कहने वाला था, आपने कहा उनका नाम राधे था, तो हम यहाँ लगातार उन्हें मम्मा कहते हैं, तो ये मम्मा नाम उन्हें किसने दिया और इसका भाव क्या था वास्तव में मम्मा नाम देने का?
शिव बाबा जैसे ही ब्रह्मा तन में आते थे
जी,
तो तब बाबा अनेक बहनों को ध्यान में भी ले जाते थे, यानी उन पे दृष्टि डालते थे और वो समाधिस्थ हो जाती थी। तो वो देखती थी कि ये जो लड़की राधा ही है, ये सरस्वती है, वही सरस्वती है जिसको विद्या की देवी कहा जाता है, जिसकी आराधना स्कूलों में होती है रोज रोज, जिसके आगे सभी बच्चे नमन करके खड़े हो जाते हैं, ये वही है। तो फिर संदेश आ गया कि इसका नाम सरस्वती, और फिर धीरे धीरे क्योंकि उसकी आयु बहुत छोटी थी,
कहाँ से संदेश?
ये संदेश जैसे मैंने कहा कि ध्यान में बहुत बहने चली जाती थी
जी।
और सूक्ष्म लोक में वो भगवान से मिलती थी, उनके मैसेज ले आती थी, तो बाबा को, ब्रह्मा बाबा को उन्होंने मैसेज दिया कि शिव बाबा ने ये दृश्य दिखाया है कि यही वो सरस्वती है, वीणा वादिनी। तो इस तरह उनका स्वरूप चेंज होता गया, मैच्योरिटी आती गई। और मैं कह रहा था कि उनसे बड़ी आयु की तो बहुत थी, अब वो 17 साल की हो गई थी, उनसे बड़ी आयु की 30 साल की, 35 साल की बहनें, माताएं और भाई तो बुजुर्ग भी बहुत थे। लेकिन फिर वैसे ही संदेशियों के द्वारा ऊपर से संदेश आया कि यही मामा है, यही जगदम्बा है, अब तुम इसे स्वीकार करो। तो उस टाइम कुछ लोगों का अहम भी जागृत हुआ, क्योंकि कुछ लोग बड़े बड़े घरों से भी यहाँ आए हुए थे और मामा एक साधारण परिवार से आई थी। लेकिन जब बार बार शिव बाबा ये संदेश देने लगे कि यही मम्मा है तुम सबकी, इसी के द्वारा तुम सबकी पालना होगी, तो फिर धीरे धीरे मतलब 2-4 मास में सभी ने ये स्वीकार कर लिया कि यही मम्मा है। और सचमुच ये नाम उन्हें मिलते ही उनमें एक माँ के गुण आ गए, लोग उन्हें मातेश्वरी कहने लगे, वो सबकी पालना करने लगी। और जैसे माँ अपने पूरे बच्चों की हर तरह से देखभाल करती है, बहुत केयर करती है, वो करती है।
ममता की मूरत माँ जग में तेरा साया, ममता की मूरत माँ जग में तेरा साया, तेरी मुस्कान रूहानी कहती तेरी कहानी, तेरे आंचल की छाया में हो, तेरे आंचल की छाया में सुख ही सुख पाया, ममता की मूरत माँ जग में तेरा साया।
सर जी वही एक विशेष चीज मैं जानना चाहता था, जैसे आपने कहा 16-17 वर्ष की उम्र में आ गई थी और उनसे बड़े बड़े उम्र में भी बड़े अनुभव में भी बड़े काफी लोग यहाँ थे, फिर भी परमात्मा ने शिव बाबा ने जैसे आपने कहा संदेश के माध्यम से इन्हें इस विश्वविद्यालय का मुख्य बनाया, इन्हें इस सरस्वती की पदवी प्रदान की, तो जरूर कुछ न कुछ विशेष बातें रही होंगी इनमें, कुछ खासियतें रही होंगी जिनको देख करके विशेष करके ये पदवी और साथ ही साथ ये जो एक पदभार इन्हें दिया गया, तो वो क्या विशेष बातें थी मम्मा में, राधे में, जिसके कारण उन्हें ये विशेष पद भी दी गई।
हमने दादी प्रकाशमणि के मुख से अनेक बार ये चर्चाएं सुनी थी, क्योंकि दादी और मामा एक ही साथ पढ़ते थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे, एक ही साथ बैठते थे, दोनों की पहले से बहुत फ्रेंडशिप थी। तो दादी प्रकाशमणि कहा करती थी कि ये राधा शुरू से ही सबको बहुत आकर्षित करती थी, केवल रूप से नहीं लेकिन अपने गुणों से, अपनी कलाओं से। और जब वो वहां भी गीत गाती थी तो सचमुच मंत्र मुग्ध कर देती थी पूरी सभा को, बहुत धैर्यवान, बहुत सुरीली आवाज, मुख पर एक अलौकिक सी मुस्कान पहले से ही, जैसे पहले से ही वो बहुत ज्यादा बाह्य मुखी नहीं थी, दूसरों की केयर करने के संस्कार, बहुत गंभीरता, ये सब गुण उनमें आ ही गए थे। और फिर जैसे ही उनको मामा का टाइटल दिया, तो यहाँ पर एक चीज विशेष रूप से होती है कि परमात्मा शक्तियां और उसके वरदान मिल जाते हैं, वो स्वतः ही दे देता है, तो बाकी रही सही चीजें उनमें स्वतः ही आ गई, उनको बहुत धैर्यवान बना दिया। क्योंकि 380 भाई बहने थे, अब उसमें बहुत सारे छोटे बच्चे, कन्याएं, माताएं, बड़ी आयु की भी, छोटी आयु की भी, 3 साल से लेकर और 35 साल तक के, आप सोचो।
और ये सारे लोग समर्पित थे, जैसे हम कहते हैं विद्यालय की शुरुआत हुई तो ये सब जैसे समर्पित,
इन सब ने अपने जीवन को पूरी तरह समर्पित कर दिया था, कई परिवार सहित समर्पित हो गए थे, माँ बाप भी, बच्चे भी, दादा दादी भी, कईयों ने अपनी संपूर्ण धन संपदा भी अर्पित कर दी थी। तो इन सब को संभालना इनका काम था। अब आप देख लिए किसी घर में 2 नारी भी हों, उनको संभालना आजकल कितना कठिन काम होता है। हमारे स्वामी शिवानंद जी जो बहुत प्रसिद्ध हुए, वो बाबा को कहा करते थे कि बाबा आज तो हम लोग भी 2-4 बहनों को, हमारे यहाँ भी शिष्याएं आती हैं रहती हैं, संभाल नहीं पाते, आप 300 को संभाल रहे हैं, 300 बहनें थी लगभग, 300 को संभाल रहे हैं, अवश्य आपके पास कोई अलौकिक शक्तियां हैं। तो यही शक्तियां उन्होंने मामा को भी दे दी थी। तो ये क्वालिटी उनमें जो शिव बाबा ने देखी कि ये सबको संभाल सकती है, सबको एकता के सूत्र में पिरो के रख सकती है, सबको निर्मल स्नेह दे सकती है, इसके मन में कोई भेदभाव नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, ये अपने कार्यों के लिए पूर्ण जिम्मेदार और डेडिकेटेड है, तो शिव बाबा ने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंप दी।
बिल्कुल लता जी, ये तो सारी विशेषताएं उनमें प्रारंभ में भी थी, क्या आपको लगता है कि ये एक विशेष जिम्मेवारी जब व्यक्ति को मिलता है तब भी उसके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं, तो किस प्रकार का परिवर्तन मातेश्वरी जी में आना शुरू हो गया जब इस प्रकार की जिम्मेवारी परमात्मा ने उन्हें प्रदान
की? देखिए, कई लोग जिम्मेदारी मिलते ही टेंशन में आ जाते हैं
जी,
परेशान होने लगते,
कुछ अहम में आ जाते
हैं। हाँ, ये हुआ मामा के साथ, बाबा ने औरों को भी दिया, वे उनके असिस्टेंट बनाया, कार्य सौंपे क्योंकि सारे बड़े बड़े काम करने थे
जी।
तो कई लोगों ने तो छोड़ दिया, वही अपने बस का ये नहीं है, टेंशन होने लगी, इनको संभालना, ये काम नहीं करते, फलाना सुनता नहीं है जी। लेकिन मामा इन सब चीजों में इन सब से ऊपर थी, जो नहीं सुनता उसको सुनने के लिए तैयार करना, जो योग्य नहीं है उसको योग्य बनाना, जिसमें कोई कमजोरी है उसको उसकी अवेयरनेस दे के कमजोरियों से मुक्त कराना, ये क्वालिटी मामा में थी। तो आ भी गई जब मनुष्य को एक जिम्मेदारी मिलती है, लेकिन आती उसी में है जिसमें पहले से ये चीजों के बीज पड़े हुए हों। जैसा मैंने कहा, कई लोग टेंशन में भी आ जाते हैं, कई लोग दुखी हो जाते हैं कि हम तो अपना काम करेंगे, वे जिम्मेदारी नहीं लेंगे, लेकिन कई लोगों को जिम्मेदारी महान बना देती है, चुस्त कर देती है, उनके आलस और अलबेलेपन को नष्ट कर देती है। तो मनुष्य अगर सोच लेता है कि मुझे इस कार्य को सफल करना है, अब ये सब लोग आए हैं, बच्चे भी हैं, इन्हें प्यार देना है, बड़े हैं, अब ये छोटी थी, देखिए एक बड़ी परीक्षा थी, भले लोगों ने स्वीकार कर लिया, फिर भी इन्हें ये ध्यान रखना था कि ये बड़े हैं, भले मामा मैं हूँ पर मुझे इनका सम्मान भी करना है, ताकि संगठन में एकता रहे और सब एक साथ मिलके चले। तो ये सब क्वालिटी उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी सीख ली, बाबा के महावाक्यों में ये सब बात आने लगी। और देखिए, कोई भी उपदेशक या कोई भी गुरु अनेक बातें तो कहता ही है, लेकिन उसको जीवन में अपनाना सबसे तो नहीं होता ना, लेकिन मामा ने फटाफट पहली पहली बार सुनते ही उन चीजों को अपना लिया। तो जैसे वो बनी बनाई देवी थी, तो सबको ऐसा लगा, जल्दी ही सबने स्वीकार कर लिया कि ये साधारण नहीं, ये तो बनी बनाई देवी है। क्योंकि जब किसी की महानताओं की छाप दूसरों पर पड़ती है, तभी वो उसके सामने शीश झुकाते हैं।
तेरी महिमा को सुन सुन कर मन करता है दीदार करे, तेरी महिमा को सुन सुन कर मन करता है दीदार करे, तुम प्यार की सरिता बहला दी, तेरे प्यार से हम भी झोली भरे, दामन फैलाए आती आ जाओ आ चुप गा जाओ, बच्चे पुकारते हैं मम्मा फिर से धरती पर आ जाओ, यादों से उतर कर नैनों में नैनों से दिल में समा जाओ, बच्चे पुकारते हैं मम्मा फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ।
रता जी, विशेष करके जैसे आपने कहा कि परमात्मा ने ही इन्हें जगदम्बा सरस्वती की पदवी दी और उन्हें उस नाम से पुकारा, और सभी लोग फिर इस नाम से ही मातेश्वरी जी को पुकारने लगे, लेकिन जब हम भक्ति मार्ग में या स्कूल्स की भी बात आपने की कि वहां पे हम देखते हैं सरस्वती माँ को अलग रूप में, हम देखते हैं कि बिल्कुल हंस वाहिनी है, वीणा वादिनी है, श्वेत वस्त्र धारिणी है, बाल ब्रह्मचारिणी है, उनके हाथों में भी कई अलंकार दिखाए जाते हैं, तो क्या इस रूप से किस प्रकार से हम समझें कि वो जो सरस्वती हैं वही वास्तव में जो सरस्वती जगदम्बा जी हैं वो हैं?
देखिए, वैसे तो स्थूल रूप में मामा वीणा बजाती ही थी
जी।
लेकिन सत्य तो ये है कि वो ज्ञान से संपन्न हो गई थी। हम भी जब आए छोटे थे, हालांकि हम मामा से के जाने से पहले आ गए थे, लेकिन उन्हें देखने का यहाँ मौका नहीं मिला, हम छोटे थे, अपने वहीं शहर में रहे, लेकिन मामा की जो क्लासेज हम सुनते थे, जिनको मुरलियां कहते हैं, वो इतनी गुह्य होती थी, उनमें इतना गुह्य ज्ञान भरा होता था कि हमारे कपाट खुल जाते थे। यानी हमने मामा की मुरलियों से जैसे कहें सब कुछ सीखा, ज्ञान की गहराई और धारणाओं पर धारा प्रभाव बोलना बिना रुके, बहुत सुंदर स्पीच। तो ये कहना बिल्कुल सार्थक है उनके लिए कि वो ज्ञान की देवी थी, ज्ञान से भरपूर थी। सबसे बड़ा ज्ञानी शिव बाबा, त्रिकालदर्शी, ज्ञान का सागर। फिर नंबर आता है प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती का। तो चाहे उनका दूसरा नंबर ले ले चाहे तीसरा, ये टॉप मोस्ट स्थान उनके हैं। तो ज्ञान में वो भरपूर थी, संपन्न थी, इसलिए उन्हें ज्ञान की देवी कहा गया। इसलिए सभी मनुष्य उनसे बुद्धि या ज्ञान विद्या मांगते हैं। ये ऐसे ही नहीं है, किसी व्यक्ति ने वो कार्य संपन्न किया है तभी उसकी उस रूप में महिमा और गायन पूजन होता है। ममा से लोग सरस्वती से जाकर विद्या की याचना करते हैं, उसका गुणगान करते हैं, तो वो सचमुच विद्या की देवी थी। ऐसा कोई सृष्टि का रहस्य नहीं था जो उन्हें ज्ञात न हो, संपूर्ण ज्ञान। और बड़े सिंपल लैंग्वेज में, बड़ी धारा प्रवाह युक्त भाषा में और लेक्चर में वो अपनी बात कहती थी। हम जानते थे कि जो लोग भी उनके सामने बैठे होते थे वो मंत्र मुग्ध हो जाते थे और बस ऐसा लगता था कि ममा की ये बात, ममा का ये भाषण चलता ही रहे। सबको प्रभु प्रेम में वो मग्न कर देती थी, सबको योगयुक्त बना देती थी, सबको श्रेष्ठ स्वमान में स्थित कर देती थी और एक ऐसा अलौकिक जादू सा चारों ओर फैल जाता था कि सब वहां बंधे बंधे से बैठे रहते थे। इसलिए बहुत सारे लोग तब हमने देखे, हम छोटे थे पर आते थे, जो बड़े खूंखार दुनिया में
जी।
लेकिन मामा के भक्त, बस मामा ही सब कुछ है। तो ये जो उनको विद्या की देवी कहा गया है सरस्वती, ये इसीलिए कि सचमुच ये चीज उनके पास थी।
जगदम्बा और सरस्वती कहकर संसार पुकारे, तुम्हें जगदम्बा और सरस्वती कहकर संसार पुकारे। घर घर में तेरी पूजा तुम करती हो सबके भंडारे, दुनिया से आके मिटा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ,
फिर से धरती पर आ जाओ।
लोग उनसे मिले, उन्होंने इस चीज को अनुभव किया कि वास्तव में ज्ञान की पराकाष्ठा थी उनके पास। लेकिन लोगों के मन में जो एक सरस्वती का रूप है, जिनके चार हाथ हैं, जो इस प्रकार से गायन की जाती है, तो मम्मा को क्या उस रूप में आज जो लोग हैं जिन्होंने उन्हें नहीं देखा है स्वीकार कर पाएंगे?
देखिए, ये तो जो भी पूजा भक्ति में होती है जिनकी, भी जैसे जगदम्बा की अष्ट भुजाधारी के रूप में महाकाली का भी एक स्वरूप है, सरस्वती की भी चार भुजाएं, वीणा और सबके तो में अलग अलग अलंकार रहते हैं। ये तो उनकी क्वालिटीज के प्रतीक होते हैं। ऐसा नहीं महाकाली को इस तरह की भयानक थी या उसने गले में मुंडों की माला डाली हुई थी, लेकिन ये प्रतीक हैं कि माया पर उन्होंने विकराल रूप धारण किया।
मतलब किसी के चार और आठ हाथ होते नहीं, प्रतीक हैं
ये उनके सद्गुणों का, उनकी आंतरिक शक्तियों का, उनकी श्रेष्ठ बुद्धि का प्रतीक होते हैं। जैसे किसी के हाथ में गदा दिखाते हैं या भाला दिखाया हुआ असुर का संहार कर रहे, तो ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं। और जो ये असुर हैं, ये मन की दूषित बुरे संस्कार, क्रोध, अहंकार, विषय विकार, इनको नष्ट किया उन्होंने, उनके प्रतीक रूप में ये दिखाते हैं।
तो ये जो चार विशेष करके सरस्वती को दिखाए जाते हैं भ्राता जी, अलंकार, उनके एक हाथ में पुस्तक दिखाई जाती है, एक हाथ में माला, एक हाथ में वीड़ा और एक हाथ में अमृत कलश दिखाया जाता है, तो ये किस बात के प्रतीक है जो मम्मा जगदम्बा?
देखिए, वीणा वही
जी जो ज्ञान,
हाँ, कि ज्ञान उन्होंने दिया। अमृत ज्ञान को ही कहते हैं, ज्ञान अमृत उन्होंने बांटा। बुक, वेद, शास्त्र, दर्शन, माना, संपूर्ण ज्ञान उनके पास था। तो ये सब चीजें उसी की यादगार। और माला, माला एक विशेष रूप से देखिए भक्ति की यादगार दिखाई गई, लेकिन वो एक महान योगिनी बन गई थी प्रारंभ से ही। बाद में नहीं, जैसे वो आई कुछ ही समय के बाद लोगों ने देखा कि तपस्या का जितना रस और जितनी लगन उनके पास है उतनी औरों के पास नहीं थी। तो ये चारों अलंकार उनकी इन चारों क्वालिटीज को दर्शाने वाले हैं, ये चारों इसलिए दिखाए गए हैं।
और विशेष करके जो ये हंस दिखाया जाता है भ्राता जी, या श्वेत वस्त्र दिखाए जाते हैं, ये किस बात से रिलेट करते हैं?
यही कि देखिए श्वेत वस्त्र पवित्रता के हैं और हंस भी एक पवित्र चिन्ह है जो नीर और क्षीर को अलग अलग कर देता है। तो ममा में भी ये परखने की शक्ति बहुत ही जबरदस्त थी। हंस माना एक बहुत ही सुंदर वाहन है, मोर भी सुंदर है, पर हंस का नाम सुनते ही देखो मन कैसा हो जाता है। हंस वाहिनी उसे इसी तरह कहते हैं कि क्योंकि वो बहुत ही मधुर थी, चेहरे पर मुस्कान थी, मन में सभी के लिए निर्मल प्यार था, सभी दुर्गुण उसने नष्ट कर लिए थे। कोई एक को महत्व दे, दूसरों को जरा रिजेक्ट करे तो खेल बिगड़ने लगता है। तो हंस जो एक सर्व प्राप्तियों और गुणों का प्रतीक कहें हम उसे, वो उनके जीवन में था, इसलिए वो उनका वाहन दिखा दिया गया है।
मैं विशेष ममा की जीवन कहानी पढ़ रहा था भ्राता जी, क्योंकि मुझे बहुत रुचि थी कि मैं भी जानूं इनके बारे में, इतनी महान हस्ती हैं। तो बहुत सारे अलंकार इन्हें प्रदान किए गए हैं, और जो मैंने अलग अलग लोगों के अनुभव आर्टिकल्स पढ़े हैं उसमें किसी ने कहा कि सिंह वाहिनी थी ममा, किसी ने तपस्विनी कहा, किसी ने आदि शक्ति कहा, इस प्रकार की। तो ये सारे जो टाइटल जो ममा को दिए गए हैं, ये परमात्मा शिव ने इन्हें प्रदान किए, या सभी ने अपने अनुभव से ही ममा को इस रूप में जानना और पुकारना शुरू किया?
देखिए दिए तो स्वयं निराकार परमात्मा ने, लेकिन फिर लोगों ने उस स्वरूप में उनको देखा।
क्या ममा से साक्षात्कार भी हुआ?
ममा से बहुतों को साक्षात्कार होते थे, घर बैठे होते थे। यही नहीं, वो ममा का स्वरूप देखते थे और उन्हें उनके पास्ट के जन्म की और भविष्य के जन्म की पूरी झलकियां दिखाई देती थी। उससे उनको स्पष्ट होता था यही जाकर श्री लक्ष्मी बनने वाली है राधा, और यही सरस्वती है, भक्ति में जिसकी पूजा हो रही वो यही है। तो क्या होता था कि सरस्वती दिख रही है, अब उसका स्वरूप लोप होता है, फिर उसकी जगह ममा आ जाती है, फिर ममा का स्वरूप लोप हो जाता है, फिर सरस्वती आ जाती है। इस तरह के साक्षात्कार बहुत होते थे, फिर वो दोनों लोप हो जाते हैं, उसी जगह लक्ष्मी दिखाई देने लगती है। तो ये सब साक्षात्कार एक को नहीं, अनेकों को होते रहते थे उस समय। तो शिव बाबा ने उन्हें ये कहा तो अवश्य था, लेकिन ये साक्षात्कार भी बहुत ज्यादा होते थे, इसलिए सभी के मुख पर ये शब्द ही आ जाते थे। जब लोग मिलने बाबा से आते थे जिनको इस तरह साक्षात्कार हुआ, अब वो जो उनकी झलक थी, जो उन्होंने देखी थी वो सामने, अरे ये तो वही है, और बस वो उसी रूप में भाव विभोर होकर ममा के चरणों में आ जाते थे, गले लगने लगते थे। तो हमारी माँ है, आप तो सरस्वती हो, आप ही वो हो जिनसे आज तक हम मिलना चाहते थे, ये सीन बहुत चलते थे।
जी जी जी। तो विशेष करके भ्राता जी, ममा को जैसे सरस्वती की आपने बात कही, जगदम्बा भी कहा जाता है, और जगदम्बा एक बहुत बड़ी बात है, पूरी जगत की माँ, और हम दुर्गा जी को भी जगदम्बा कहते हैं।
देखिए जगत की माँ तो कोई हो नहीं सकती, जगत में तो बहुत सारे लोग
हैं, बहुत बड़ा टाइटल है ये,
और सबकी माताएं अलग अलग हैं। लेकिन जब शिव बाबा ने ये रुद्र यज्ञ रचा, इसमें बहुत सारी महान आत्माओं ने अपने जीवन की आहुति दे दी, उनमें से कई अश्रतन थे और कई 108 विजयमाला। इसको हमारे दर्शक अब समझ गए होंगे, यानी संसार की जो सबसे महान आत्माएं हैं, जो इष्ट देव देवियां हैं इस सृष्टि की, जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, वो साधारण रूप में यहां पर आ गई थी, और ये बनी उनकी मम्मा, और वो थी औरों की मम्माएं, इसलिए लिंक बन गया ये इष्ट देव देवियों की माताएं। अब देखिए भारत में कितनी इष्ट देवियां, हमारे गुजरात में पास में ही अलग अलग देवियां हैं, अनेक भक्त अलग अलग देवियों के में मान्यता रखते हैं। तो जैसे वो उनकी माँ हो गई और ये हो गई उन सब की माँ, इस कारण इनको जगदम्बा कहा गया, और इसी कारण दुर्गा देवी को भी जगदम्बा का टाइटल दिया गया, क्योंकि उसको इन इस देवियों में सबसे ऊपर माना जाता है।
जी जी जी। इसी प्रकार से विशेष टाइटल ये भी दिया गया, मैंने उसमें पढ़ा भ्राता जी, ममा के लिए कहा जाता है कि बिल्कुल बाल ब्रह्मचारिणी, और जितनी भी इष्ट देवियां हैं उन इष्ट देवियों की भी प्रतीक उसमें कहा गया है मम्मा को।
बाल ब्रह्मचारिणी की बात जो कहें, ये सब तो बड़ा आकर्षित करता है हमारे भारत में तो विशेष रूप से
जी।
बाल ब्रह्मचारिणी के बाद भी प्योरिटी की बहुत सारी स्थिति है, और मम्मा को तो शिव बाबा से ऐसा वरदान मिल गया या उनकी संपूर्ण प्योरिटी के संस्कार जागृत हो गए, तो वो तो सबकी माँ बन गई। कोई कैसा भी हो, सब तो उसके बच्चे थे और सब उसको माँ की दृष्टि से देखते थे, इसलिए उनके मन की सूक्ष्म वृत्तियां भी, चित्त की सूक्ष्म वृत्तियां भी प्योरिफाई हो गई थी। इसलिए क्या होता था, मम्मा से जो गले लग जाता था उसका भी चित्त पवित्र हो जाता था। जैसे मैंने कहा, जगदीश भाई ने भी अपनी पुस्तकों में लिखा कि मामा बहुत बहुत सुंदर थी। सुंदर नारी के प्रति बहुत लोगों को आकर्षण होता है, लगाव होता है, लेकिन मामा को देखते ही एक अलौकिक छवि उनमें दिखाई देती थी, और कोई इम्प्योर फीलिंग किसी को भी होती नहीं थी। उनकी संपूर्ण हिस्ट्री में ये प्रसिद्ध है, एक दो जगह की बात है जो मैं सुनाऊंगा आगे चलकर। तो जो उनको गले लग जाता था या जिसके सिर पर वो हाथ रख देती थी, उसे लगता था प्योरिटी के वाइब्रेशंस उसमें समा गए, उसके मन का मैल दूर हो गया, उसकी वासनाएं शांत हो गई। तो बाल ब्रह्मचारिणी तो थी ही, लेकिन प्योरिटी के संपूर्ण बल से वो सुसज्जित भी थी।
संसार की हालत ऐसी है, क्या बहुत जरूरत है तेरी। संसार की हालत ऐसी है, क्या बहुत जरूरत है तेरी। नफरत की धूप है चारों तरफ, आकर कर दो तुम छाव मेरी। मीठी दृष्टि और वाणी से माँ प्रेम नीर बरसा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ।
ये प्रश्न हमेशा मन में बना रहता था व्रता जी, और जो पिछली हमारी चर्चा हुई मातेश्वरी जी के बारे में, तो मैंने भी अध्ययन किया तो मुझे भी लगा कि सचमुच जिनके जीवन में ऐसी विशेषताएं थी वही सरस्वती होनी चाहिए।
हम सभी ये बचपन से ही सोचते थे। देवताओं के लिए कहा जाता था वो अमर थे, अमृत पिया था उन्होंने
जी।
हम सोचते थे फिर गए कहां, कोई कहता था ऊपर रहते हैं कहीं, लेकिन ये सत्य है। जैसे महात्मा गांधी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया, उनकी प्रतिमा, शिवाजी की प्रतिमा, महाराणा प्रताप की प्रतिमा या महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं, तो जिन प्रतिमाओं को मंदिर में सजाया गया है उन्होंने भी अवश्य कुछ महान कार्य किया होगा। हालांकि हमारे पुराणों में इसकी कथाएं हैं कि देवी दुर्गा ने असुर का संहार किया, ये सब कहानियां तो हैं, लेकिन इनके पीछे कुछ अलौकिक रहस्य हैं, वो मैं पहले सबके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं। कल्प के अंत में यानी कलयुग के अंत में स्वयं भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं युग बदलने के लिए, कल्प को बदलने के लिए। उस समय वो आकर सभी का आह्वान करते हैं कि आओ मेरे इस महान कार्य में सहयोगी बनो। ये बात प्रसिद्ध भी है कि शिव अकेला कुछ नहीं करता था, शक्तियों को साथ लेकर ही करता था। शिव और शक्तियां जब मिली तभी उनकी सत्ता ने सब कार्य किया
जी।
तो उसने आह्वान किया और बहुत सारी बहनें माताएं इस आह्वान पर आ गई, उन्होंने अपने जीवन को पवित्र बनाया, ईश्वरीय कार्य में मदद किया, सबको भगवान का संदेश दिया, सबको राजयोग सिखाया और अपने जीवन को भी उन चीजों से भरपूर किया। तो ये कार्य वास्तव में चारों युगों में ही सबसे महान कार्य था। देखिए, देश को स्वतंत्र कराना, गरीबों की सेवा कर देना, भूखों को भोजन खिला देना, दान पुण्य कर देना, ये भी अच्छे कार्य हैं, लेकिन युग बदल देना, दुख शांति के साम्राज्य को, रावण के साम्राज्य को एकदम स्वर्ग में बदल देना, ये कार्य जिन आत्माओं ने किया उनकी ही ये प्रतिमाएं हैं। तो उनमें से एक महान आत्मा, सर्वोपरि आत्मा थी जगदम्बा सरस्वती। उन्होंने अपने जीवन में गहन तपस्या भी की, उनकी वाणी में भी बहुत प्रभाव था, उन्होंने अनेकों को भगवान से मिलाया अनेकों को मुक्ति जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाया, अनेकों को मनोविकारों से मुक्त कराया। ये संख्या थोड़ी नहीं थी, बहुत थी, इसलिए उनकी पूजा हो रही है। और जो प्रतिमाएं हैं उनकी पूजा नहीं होती, बस एक बार माला चढ़ा देते हैं, लेकिन इनकी पूजा रोज
और हर प्रकार की मनोकामना जगदम्बा से,
इसलिए उन्हें कामधेनु भी कहा जाता था। यही बात हमारी मामा में थी कि वो सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती थी। मामा जब यहाँ थी तो हमने सुना कि कोई भी व्यक्ति उनसे असंतुष्ट या नाराज नहीं था। ये बहुत बड़ी चीज होती है कि 400 लोग किसी से संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो, कोई शिकायत ना हो कि मामा ने हमें ये बुरा कहा, उसने हम पे क्रोध कर दिया, या हमारी ये बात नहीं सुनी, या हमारी ये इच्छा पूरी नहीं की। सबको संतुष्ट करना ये उनकी एक मुख्य क्वालिटी थी, इसलिए उन्हें कामधेनु कहा गया।
मतलब उन्होंने सबकी मनोकामनाएं यहाँ पूरी कर दी कि अभी तक वो लोग, उनकी जो जड़ प्रतिमाएं हैं, अब तक वो लोगों की कामनाएं पूरी कर रही हैं। पता जी, उनकी तपस्या के बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा है और सुना है कि वो बहुत तपस्विनी थी, बहुत गहन तपस्या किया करती थी। उनकी तपस्या के बारे में थोड़ा बताएं।
जैसे ही वो बाबा के पास आई, मैंने कहा कि जैसे प्रभु प्रेम में वो मग्न होने लगी, बाबा ने उन्हें भी, यानी शिव बाबा ने उनके अनेक जन्मों के साक्षात्कार करा दिए, तो ये सब देखकर उन्हें संसार तो गया भूल और वो हो गई प्रभु प्रेम में मग्न। और एक ही बात रह गई कि जो ईश्वरीय आदेश आए उसको सबसे पहले मुझे पालन करना है। कि ये बात बहुत बड़ी होती है, सब करेंगे हम भी कर लेंगे, कर तो रहे हैं, थोड़ा कर रहे हैं, कुछ आज किया कुछ आगे कर लेंगे, ये नहीं, मुझे आज ही वो सब कुछ कर लेना है। तो बाबा ने सबसे पहली साधनाएं कराई थी, तुम आत्माएं हो, तुम ये देह नहीं हो, तुम इससे न्यारे हो, तुम यहाँ भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हो, तुम इस देह के मालिक हो, तुम तो परम पवित्र हो, शांत स्वरूप हो। ये साधना शुरू कराई थी बाबा ने। तो मामा ने इस साधना को बहुत ज्यादा कर लिया था शुरू से, इसलिए उनके चेहरे पर बहुत बड़ी दिव्यता और बहुत जबरदस्त तेज आ गया था। इसी का प्रभाव होता था कि कोई भी जो उनको देखता था, क्योंकि शिव बाबा ने ये प्रथा ही प्रारंभ कराई थी कि सबको आत्मिक दृष्टि से देखना है। देह हैं ही नहीं हम, तो न देह समझ के बात करनी है, न दूसरे को देह देखकर उन्हें देखना है उस दृष्टि से, बिल्कुल आत्मिक भाव, मैं भी आत्मा तुम भी आत्मा, आत्मिक भाव में रहना, आत्मिक दृष्टि से देखना। इसकी मामा ने बहुत साधना कर ली, इसलिए मामा बहुत जल्दी सवेरे उठ जाती थी।
जी, हमने सुना है दादाजी, वो 2 बजे उठ जाती थी। आजकल तो लोग 2 बजे सोते हैं, वो 2 बजे उठ के साधना करती थी।
ये हो गया था कि बाबा ने ऐसी दिनचर्या बनाई थी कि 8 बजे सारा प्रोग्राम पूरा, 6 बजे भोजन शुरू हो जाता था, 6:30-7 तक सभी खा लेते थे, फिर थोड़ी बहुत क्लासेज और सत्संग होते थे, 8 बजे सब मुक्त, और बच्चे भी थे बहुत छोटे, तो 8:30-9 बजे तक सभी विश्राम में चले जाते थे। और मामा तो विश्राम में जाने से पहले भी बहुत अच्छी साधनाएं किया करती थी, तो फिर छते थी तो 9 बजे सो गए, फिर 2 बजे 2:30 बजे उठ गए, और बहुत अच्छी साधनाएं मामा ने की। स्मृति स्वरूप हो गई मामा। देखिए, बाबा और मामा के लिए, दोनों के लिए ये एक विशेष गिफ्ट थी कि उन्हें पता चल गया था तुम ये हो, अब तुम सरस्वती हो, वीणा वादिनी, और भविष्य में तुम श्री लक्ष्मी बनने वाली हो। इस अवेयरनेस ने, इस स्मृति ने उनकी आंतरिक शक्तियों को बहुत बढ़ा दिया था। यही बात हम भी सीखते हैं उनसे कि हम भी अगर अपने वर्तमान और भविष्य स्वरूप की स्मृतियों में रहें, जिसे हम अलौकिक नशा भी कहते हैं, तो हमारी कई चीजें समाप्त हो जाएंगी, कई वीकनेसेस और कई महानताएं हमारे जीवन में आ जाएंगी। तो मामा सवेरे से नहा धो के 2:30 बजे बैठ जाती थी और बिल्कुल मग्न आत्मिक स्वरूप परिस्थिर लंबा काल घंटों। तो ये साधनाएं मामा ने प्रारंभ से ही बहुत ज्यादा की, इसलिए सहनशील तो वो पहले भी थी लेकिन अब आ गई उनमें सहन शक्ति, हर चीज को सहन करने की शक्ति। चाहे उनके शरीर में बीमारी आई, कभी बीमारी तो आ ही जाती है, और फिर यहाँ माउंट आबू में कई तरह की तकलीफें थी, थोड़ा पानी भी हैवी था, सबको तकलीफ हो जाती थी, लेकिन वो सहन शक्ति वाली देवी बन गई, सहनशीलता की मानो देवी बन गई। ऐसे धैर्य चित्त बहुत सभी के लिए आत्मिक प्यार, और विशेष रूप से जो उनके लिए प्रसिद्ध है वो मैं एक बात सबको कहना चाहूंगा। मान लो किसी दो कन्याओं में आपस में मनमुटाव हो गया, अब दोनों मामा के पास पहुंची, जैसे बच्चे लड़के माँ के पास पहुंचते हैं ना, तो दोनों ज्यादा लड़ते तो नहीं थे बच्चे, लेकिन थोड़ा बहुत हो गया और पहुंचे मामा के पास, तो एक अपनी बात कहेगा, मामा इसने मुझे ये कहा, दूसरी कहेगी नहीं मामा इसने मुझे ये कहा। तो मामा मुस्कुराते हुए पहले दोनों की बात अच्छी तरह सुन लेती थी, उन्हें दृष्टि देती रहती थी, तो जैसे जैसे वो उनकी सुनती रहती थी आधे वो शांत होते रहते थे, फिर पूछते थे अच्छा पहले किसने कहा, अब दोनों एक दूसरे को देखने लगते थे, फिर वो कहेगी इसने पहले कहा था, अब उसको मानना तो पड़ेगा ही, पहले मैंने कहा था, तो फिर उसको बहुत प्यार से समझाती बच्चे ऐसे नहीं बोला करते। तो इतने प्यार से वो अपनी बात कहती थी कि उसमें शिक्षात्मक स्वरूप नहीं होता था,
माँ का स्वरूप,
माँ का एक स्वरूप प्यार से, जैसे माँ कहती है उसमें प्यार भी समाया होता है, अपनापन भी समाया होता है, आदेश नहीं, बहुत शुभ भावना, बहुत कल्याण की भावना। इसलिए जल्दी दोनों बच्चे खुश होके वापिस चला, हाँ मामा बहुत अच्छी है, मामा हमें बहुत प्यार करती है। तो देखिए मामा शिक्षा भी दे देती थी और उनको लगता था मामा हमें बहुत प्यार करती है, ये एक बहुत बड़ी चीज,
बहुत बड़ी क्वालिटी की बात है। हाँ। जी, क्योंकि संगठन में जब कभी हमें संभालना हो, बच्चों को संभालना हो स्पेशली, तो इस क्वालिटी का होना बहुत आवश्यक।
एक नाराज हो जाएगा, एक खुश होगा, लेकिन मामा में ऐसी क्वालिटी थी और ऐसी विवेक शक्ति थी कि दोनों ही खुश होके जाते थे।
धरती सा धीरज है तुझ में ओ माँ, सबसे प्यारी यारी माँ जगदम्बा, धरती सा धीरज है तुझ में ओ माँ, सबसे प्यारी यारी माँ जगदम्बा, धीरज है तुझ में ओ माँ, सबकी प्यारी न्यारी माँ जगदम्बा, धरती सा धीरज है तुझ में ओ माँ।
सोच लें सभी लोग इस बात पर कितनी बड़ी शक्ति और विवेक उनके पास और शुभ भावनाएं उनके चित्त में रही होंगी कि दोनों ही नाराज नहीं कहते थे मामा तो हमारी है, दोनों ही कहते थे मामा तो हमारी।
मुझे लगता है भरता जी कि उनकी तपस्या का बल सचमुच इसमें बहुत कार्य करता रहा होगा। और जो आपने सहनशीलता की बात कही, तो मैं भी वो किताब मामा की, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मैं पढ़ रहा हूं, तो मैंने पढ़ा कि सहनशीलता की देवी के रूप में उन्हें लोग जानते थे, और कई बार जब उन्हें शारीरिक रूप से तकलीफ थी, डॉक्टर आता था देखने भी, तो मम्मा के चेहरे से लगता ही नहीं था कि जैसे वो बीमार हैं, और उन्हें जो अटेंड करने वाली बहन होती थी कई बार उन्हें डॉक्टर पेशेंट समझ लेता था कि हाँ बोलो कि तुम्हें क्या तकलीफ है। तो ये एक बहुत बड़ी खासियत और बहुत बड़ी विशेषता है।
मम्मा जब चलती थी, चलना बहुत रॉयल, बहुत रॉयल
जी,
मुस्कुराती थी जोर से, तो मामा को किसी ने हंसते नहीं देखा जब से वो योगिनी बनी थी। मुस्कुराती थी तो माना फूल बिखरते थे चारों ओर, लोगों के गम दूर हो जाते थे। ऐसा नहीं मामा यहाँ बोल रही और आवाज दूर दूर तक जा रही है, ये नहीं। और चौथी बात जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के लिए संपूर्ण डेडिकेटेड, संपूर्ण आज्ञाकारी, जो उन्होंने कह दिया बस वही करना है, उसमें नो क्वेश्चन। अधिकतर बुद्धिमान लोग क्वेश्चन उठाया करते हैं, लेकिन वो बुद्धिमान थी, उनके साथ एक शब्द और जोड़ा जाएगा, वो दिव्य बुद्धि से संपन्न थी। और जो दिव्य बुद्धिमान मनुष्य होता है, ये योगियों की क्वालिटी, ये देवियों की क्वालिटी है। वो क्वेश्चंस तेरा मेरा, अपनी बुद्धि का दिखावा, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, ये सब वो नहीं किया करते। तो ममा बहुत बुद्धिमान थी और उनकी बुद्धिमानी यही थी जो भगवान ने कह दिया वही अंतिम सत्य, हमें वही करना है।
बाबा की निर्मा को पूरा किया, बच्चों को प्यार पा दिया। बाबा की निर्मा को पूरा किया, बच्चों को प्यार पा दिया। धीरज है तुझ में ओ माँ, सबकी प्यारी न्यारी माँ जगदम्बा। धरती सा धीरज है तुझ में ओ माँ, सबकी प्यारी न्यारी माँ जगदम्बा।
तो इतनी बड़ी क्वालिटी हो जाती है कि हाँ जी करके इस कार्य को आगे बढ़ाना। और उन्होंने जो भी कह दिया, और वैसे ही परमात्मा ने जो कहा है उसमें तो कितना बड़ा कल्याण होगा। और सचमुच ये ज्ञान ही दिखाता है, उनका निश्चय दिखाता है कि वो हर चीज को एक्सेप्ट करके इस बात को चलती थी। माता जी, आपने पहले एक बात कही थी, अब तक मैं जगदम्बा सरस्वती कह के मातेश्वरी को पुकार रहा था। आपने कहा कि जैसे परमात्मा ने साक्षात्कार करा दिया कि भविष्य में आप ही जाके लक्ष्मी बनने वाली हैं, तो क्या जिस लक्ष्मी माँ की हम पूजा कर रहे हैं मंदिरों में, जिनसे हम धन मांग रहे हैं, क्या मातेश्वरी ही लक्ष्मी बनने वाली
है? बिल्कुल यही बात शिव बाबा ने उन्हें बता दी थी और सबको बता दी थी कि ये जो अब सरस्वती है, क्योंकि इसने बहुत बड़ा त्याग कर लिया, ज्ञान का खजाना अपने अंदर संपूर्ण भर लिया, महान तपस्या कर ली, ज्ञान खजाना ही भविष्य में स्थूल खजानों के रूप में प्राप्त हो जाता है। वर्तमान का ज्ञान का खजाना जिसके पास जितना है, भविष्य में स्थूल खजाना उसके पास उतना ही है। तो ज्ञान का खजाना इनके पास ही सबसे ज्यादा था, हमारे पास भी बहुत है, पर जब मामा की बात सुनते हैं तो हमें लगता है हमारे पास बहुत कम है, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। तो इसलिए वो धन की देवी बन गई, लोग उनसे धन की कामना करने लगे। मुझे कुछ और बात भी याद आ रही है, उनके जीवन में कुछ बहुत सुंदर घटनाएं भी हुई जो उनके गुणों को प्रत्यक्ष करती थी। मामा जहां तहां सेवाओं में जाती थी, विरोधी लोग भी तो होते ही हैं। अमृतसर में एक बार थी तो कुछ विरोधी लोगों ने मामा का बहुत ज्यादा विरोध किया और वो आ गए हंगामा करने जो हमारा छोटा सा आश्रम था वहां पर। मामा बाहर निकली बहुत निर्भयता के साथ, उन सबको देखा और मुस्कुराई। बस इस मुस्कान ने सभी के जो विरोध थे ना, गुस्सा, उसको ठंडा कर दिया। उन्हें लगा चाहे ज्ञान में कितना भी डिफरेंस हो, देखो फिलोसॉफिकल डिफरेंस तो रहता ही है ना, किसी के विचार कुछ होंगे, लेकिन ये सचमुच देवी है। चलो हम इनकी कुछ ज्ञान की बातों से सहमत नहीं हैं, पर ये है बहुत महान। तो ऐसी घटनाएं कई बार मामा के साथ हुई। एक और घटना जो मैं कहना चाहूंगा, कई बार मामा की परीक्षा लेने के लिए दूषित वृत्ति से भी लोग उनके सामने आ जाते थे। ये भी हुआ कई बार कि भाई सुना है इनकी मामा बहुत पवित्र है, वो तो देवी है, हम चल के देखते हैं कैसी वो देवी है। आ जाते थे दूषित वृत्तियों से, जैसे शास्त्रों में भी है ना, देवियों के आगे राक्षस लोग, असुर लोग दूषित वृत्ति से आ जाते थे और देवी उन्हें पहचान लेती थी। तो बिल्कुल यही होता था, वो आ रहे हैं, सब लोग मिलते थे, वो भी उनमें हैं, उन पे जैसे ही दृष्टि गई, मामा कहती थी वहीं ठहर जाओ, अपनी वृत्तियों को पवित्र करो, तब माँ के पास आ सकते हो। अब बेचारा वो तो हैरान हो जाता था, इसने तो जान लिया मुझे, वहीं से नतमस्तक हो जाता था।
ऐसे करे हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का, प्यार देकर अर्थ समझाया है सच्चे प्यार का। ऐसे करे हम
प्योरिटी का तेज उनके साथ ईश्वरीय बल, उनको अंदर ही अंदर बहुत सारे वरदान भी प्राप्त थे, क्योंकि मामा बहुत गुप्त अपने को रखा है, उसने अपनी सारी चीजों का वर्णन नहीं किया। आज तो लोगों के पास जरा सिद्धि आ जाए तो 100 जगह बताएंगे मेरे पास ये आ गया है, लेकिन मामा ने अपनी शक्तियों को बिल्कुल गुप्त रखा था। लेकिन उनके इस तरह के व्यवहार से ये चीजें प्रत्यक्ष होती थी। तो ऐसी अनेक घटनाएं मामा के साथ होती रही जिसमें उनकी संपूर्ण प्योरिटी बिल्कुल प्रख्यात होती थी, उनकी निर्मलता, उनके मन में जो सबके लिए शुभ भावनाएं थी वो उन लोगों को भी शांत कर देती थी जो विरोधी होते थे। इसलिए बाबा हमेशा जहां कहीं भी सेवाओं में विरोध हो रहा, हमारी बहनें गई हुई हैं, तो मामा को भेजते थे, मामा वहां तुम जाओ, और बस मामा के जाने से बहुत जल्दी
शांत हो जाती थी। मतलब जैसा हमारा मंच है भ्राता जी, हमारा कार्यक्रम है समस्या से समाधान की ओर, तो मामा समाधान स्वरूप थे विशेष। और भ्राता जी 1937 से लेके 1965 तक जब मामा अव्यक्त हुई, पूरी यज्ञ का संचालन उन्होंने किया, इतने सारे सेवा केंद्र थे, निश्चित रूप से समस्याएं तो आती रही होंगी, ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या विशेष मामा का अप्रोच रहता था, कैसे वो सॉल्व करती थी, उनकी मानसिकता क्या रहती थी, और कैसे लोग इतनी जल्दी समझ जाया करते थे?
जैसा मैंने उनको अपने दिव्य विवेक से देखा, मैंने सुना भी बहुत था उन, क्योंकि हम छोटे थे और मामा की तो बहुत चर्चाएं हुआ करती थी बाबा के समय भी और बाबा के जाने के बाद भी। जैसे बाबा की चर्चाएं होती थी, मामा की चर्चा भी थी, और मामा के साथ जो उनकी ब्राह्मणी हम कहते हैं जो उनकी सेवा में रहती थी वो भी थी। हमारे उन साथ वो 20 साल तक रही, वो भी हमें बहुत चीजें सुनाया करती थी। तो वास्तव में यज्ञ को अनेक कठिनाइयों से तो गुजरना पड़ा, और समझो दो ही थे, या तो बाबा या मामा, उनको ही फेस करना है सब कुछ। इतना बड़े संगठन को लेकर चल रहे हैं, वहाँ भिन्न भिन्न संस्कारों वाली आत्माएं भी थी, कुछ छोटे बच्चे आ गए थे, अब जो वो बड़े होने लगे उनमें कई इच्छाएं कई वासनाएं भी जागृत होने लगी, उनको भी मामा ने बहुत अच्छी तरह संभाला। लेकिन यज्ञ में बहुत सारी कठिनाइयां शुरू से आई। जब यज्ञ शुरू हुआ 37-38 की बात है, 38 की ये बात है, तो किसी ने बाबा पर केस कर दिया कि बाबा तो ये करता है, कन्याओं को भगा रहा है, अनेक उल्टी सुलटी बातें बाबा के विरुद्ध की
जी।
कोर्ट केस हो गया, तो बाबा ने मामा को भेजा था। अब मामा तब छोटी थी, 17 साल की, और जज है, दोनों ओर के वकील हैं, और जज जो है मामा से कुछ पूछ रहा है, और मामा की निर्भीकता के आगे वहां सभी नतमस्तक हुए, और वो केस लंबा चला ही नहीं। मामा ने बिल्कुल निर्भयता पूर्वक अपने तर्क दिए कि क्या कोई एक व्यक्ति इतने लोगों को भगा सकता है, क्यों ये सब लोग भाग रहे हैं, क्या बाबा आपसे पहले नहीं था, उनके पास ये पावर कहाँ से आ गई। स्पष्ट कर दिया उनके तन में निराकार परमात्मा आते हैं, वो सबको अपनी ओर खींच रहे हैं, उसने पवित्र बनने का संदेश दिया है, ये दादा कौन होता है सबको पवित्र बनने की बात कहने वाला, इसमें वो कहाँ ताकत है, वो तो स्वयं ग्रस्थी था, स्वयं भगवान ने आकर का काम मां शत्रु है इसको जीतो। तो ये अनेक कन्याएं माताएं और पुरुष भगवान के आह्वान पर आए हैं। अब जज भी देखने लगा, और जब ये बताया भगवान का आदेश है तो भगवान के नाम से तो सभी घबराते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए, वहीं सब कुछ क्लियर हो गया। तो एक बहुत पावरफुल स्वरूप, बहुत निर्भयता, ब्रह्मचर्य की शक्ति उसी समय मामा की देख ली थी सबने, सब खेल वहां समाप्त हो गया। फिर 13-14 साल के बाद आया बेगरी पार्ट हम उसे कहते हैं। अभी यज्ञ चल रहा था, 400 लोग खाने वाले, अभी सोर्स ऑफ इनकम तो कहीं से था नहीं, वो धन संपदा सब समाप्त हो गई बाबा की और जिन लोगों ने लगाई थी, अब कुछ भी नहीं था। ये एक ऐसा समय था 4-5 साल का जो सभी के लिए एक अग्नि परीक्षा थी। उसमें मामा ने कैसे सबको धैर्य दे के रखा, बाबा ने बहुत काम किया, लेकिन मामा से सब बात करते थे ना, बाबा के पास तो सब जाते भी नहीं थे, बाबा बुजुर्ग भी थे और बाप से तो बच्चे
के पास जाना ज्यादा सहज होता है,
जिसकी जो कठिनाई हुई वो मामा के पास, भूख लग रही मामा, दवाई नहीं है, ये बीमारी हो गई है, मामा सबको शांत करती थी। और ऐसी अनेक घटनाएं हुई, जब पैसा नहीं है लूज मोशन हो गए सबको, कई तरह की बीमारी हो गई, ठंड थी आबू में बहुत, कपड़े लाए नहीं थे, इतने पैसा था नहीं। शिव बाबा ने ऊपर से कहा ये खिला दो, और वह सबको खिलाया और बीमारियां ठीक हो गई। तो उस काल में भी मामा ने बहुत धैर्यता का परिचय दिया, बहुत समझदारी से सबको सहारा दिया। लेकिन मेंटल सपोर्ट बहुत बड़ी चीज होती है, उसके द्वारा सभी स्थिर रहे। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि फिर मामा को कुछ बीमारियों को फेस करना पड़ा, लेकिन जैसे आप भी कह रहे थे ये बिल्कुल सत्य था। हम तो तभी आ गए थे और भोली दादी जो किचन की इंचार्ज थी, जिसका मामा से गहरा कनेक्शन रहता था, सुनाया करती थी कि मामा को कुछ काफी तकलीफें भी हुई, लेकिन मामा के चेहरे पर कभी कोई बीमारी की झलक दिखाई नहीं देती थी। वो कराह रही हो, उसको कुछ पेन फील हो रहा हो, या उसके मन में कुछ परेशानी हो रही हो, वो बाबा बाबा कर रही, ये भी नहीं। चित्त शांत धैर्यवत, जैसे ये शरीर के कर्म भोग हैं, शरीर भोग रहा हो, मैं इससे मुक्त हूँ, ऐसी योग की श्रेष्ठ स्थिति उन्होंने प्राप्त की थी। और अंत में सेवा करते हुए सबको अंगूर खिलाकर, अंगूर लगे थे पहली बार मोटे मोटे, वो अंगूर सबको वो बांटकर, फिर ऐसा ही मैं कहूंगा जैसे स्वेच्छा से देह का त्याग किया था।
जो भी है मेरा आपको उसकी है बड़ी झोली है, आज उन्हें अंतिम अंगूरों की वो डोली, जो आपके संग जीते याद लम्हे वो तमाम, सबको ही प्यार बांटना जगदम्बा का
कष्टों से नहीं, परेशानियों से नहीं। बहुत जैसे कईयों की हो जाते हैं ना, हॉस्पिटल में पड़े हैं, इंजेक्शन लग रहे हैं, ये हो रहा है वो,
और वैसे भी तपस्वियों की निशानी ही यही है ब्राता जी। और इनका मातेश्वरी जी का पूरा जीवन ही त्याग और तपस्या से जुड़ा हुआ था, तो निश्चित रूप से उनका जो अंत था वो भी तो महान होगा, दूसरों के लिए प्रेरक होगा ही। मैं विशेष करके जानना चाहूंगा ब्राता जी अंत में, कि क्या विशेष शिक्षाएं देकर के मातेश्वरी जी गई हैं सारे समाज को, सबके कल्याण के लिए, ताकि सभी लोग सुखी हों, शांत हों और अपने जीवन को पावन बनाए। उनकी
मैं अपने दर्शकों को कहूंगा कि वो केवल हमारी मम्मा नहीं, वो तो जगत की अम्मा है, मम्मा है, सभी उसके बच्चे हैं, यही उनकी सबके लिए दृष्टि थी। इसलिए सभी उनके जीवन से यही सीखें कि हमें अपने चित्त में सभी के लिए निर्मल प्यार रखना है, बच्चे और बच्चियों में कोई भेद नहीं करना है, सबको समान रूप से पालना करनी है, सबकी सुननी है, सबको संतुष्ट करना है, सबको प्रेम बांटना है, अपने चित्त में धैर्य को धारण करना है, सहनशीलता की देवी बनना है, और महान योगिनी बनकर मामा का स्वरूप अपने स्वरूप में दिखाना है। जैसे बच्चों में माँ दिखाई देती है ना, हम सोचें जिसकी माँ इतनी महान हो वो बच्चे कितने महान होंगे, यही संदेश हम सब के लिए है। तो हमारी उनकी इस पुण्यतिथि पर यही शुभ श्रद्धांजलि होगी कि उनकी तरह हम भी महान बने और अपने जीवन से उनका स्वरूप दिखाएं।
जी जी जी, वैसे कहा जाता है ब्राता जी आपकी बात से लग रहा है, और मामा के लिए विशेष शायद किसी कवि ने कहा होगा कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। तो सचमुच मातेश्वरी जगदम्बा जी के बारे में जब आप बातें कर रहे हैं तो लग रहा है कि इसका कहीं कोई अंत ही नहीं है। जितना हम सुने और जितना धारण करें, सचमुच हमारा जीवन उतना श्रेष्ठ बनेगा। आपने सुंदर प्रकाश मामा के जीवन चरित्र पे दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्राता जी। मित्रों, परमात्मा के लिए कहा जाता है कि यदि सागर को स्याही बना लिया जाए, जंगल को कलम बना लिया जाए और पूरी वसुधा को ही कागज बना लिया जाए, फिर भी उनकी महिमा नहीं लिखी जा सकेगी। इतनी अपरंपार महिमा है परमात्मा की, वैसी ही महिमा सचमुच मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती की भी है, जिनका जीवन त्याग से, तपस्या से परिपूर्ण रहा, जिन्होंने मानव जाति की सेवा की, जिन्होंने अपने जीवन से बस दिया ही दिया, अंत तक जीवन भी देती रही वो सभी को। और आज उनकी पुण्यतिथि पे जैसे ब्राता जी कह रहे थे कि हमें यही सीखना है कि जैसे उन्होंने परमात्मा के लिए अपना जीवन दिया, संसार के लिए अपना जीवन दिया, सबकी सेवा की और अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ, इतना महान बनाया, दिव्य गुणों से संपन्न बनाया, हम भी अपने जीवन को उसी महानता के पथ पर लेकर चलें। जैसे हमारे पूर्वज होते हैं वैसे ही हमें भी होना चाहिए ना, क्योंकि हमारे पूर्वजों के लिए हमारी सच्ची आस्था, निष्ठा या सम्मान यही है कि उनके गुणों को, उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को हम भी अपने जीवन में धारण करें। आज विशेष मम्मा का पूरा जीवन तो सागर के समान है, हमने उसे गागर में समाने की कोशिश की और उनके जीवन चरित्र को मैं स्वयं भी पढ़ रहा हूँ, बहुत ज्यादा अनुभव प्राप्त हो रहे हैं, अंतर से प्रकाशित अनुभव कर रहा हूँ। आप सबसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार इस आदि शक्ति जगत जननी के जीवन चरित्र को आप भी अवश्य पढ़ें, आपको लगेगा कि सचमुच ये जीवन कितना महान जीवन था उनका और हमें भी अपने जीवन को ऐसे ही श्रेष्ठ और महान बनाना चाहिए। तो आप अंता के पद पर आगे बढ़ें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।
एक प्रभु से हो रिश्ता, कन के फरिश्ता दिखाया, नाज है जग को तुम पर मां, तुझ में लक्ष्मी रूप पाया। एक प्रभु से हो रिश्ता, कन के फरिश्ता दिखाया, नाज है जग को तुम पर मां, तुझ में लक्ष्मी रूप पाया। यादगार ये कल्प कल्प की इतिहास फिर दोहराया, ममता की मूरत माँ जग में तेरा साया, ममता की मूरत माँ जग में तेरा साया। तेरी मुस्कान रूहानी कहती तेरी कहानी, तेरे आंचल की छाया में हो, तेरे आंचल की छाया में सुख ही सुख पाया। ममता की मूरत माँ जग में तेरा साया।